हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्री रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। तो वैष्णव समाज में वैष्णव के लिए आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे आज हम जो चर्चा करेंगे रामानुजाचार्य की लाइफ पे और लाइफ से क्या टीचिंग्स ले सकते हैं हम, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मतलब हम ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसने ये कथा पहले नहीं सुनी होगी, पहले भी हमने इसमें से अधिकांश चीजें सुन रखी होंगी, और पर आज खाली हमारे को सुनने का पहले हमें असली मतलब पता होना चाहिए कि सुनना होता क्या है। क्योंकि ये जो अभी हम कार्य करने जा रहे हैं, ये जो भागवत क्लास, जो भागवतम पे क्लास होती है, तो ये कभी हम भागवत बुक भागवत पे करते हैं और कभी व्यक्ति भागवत पर कथा होती है ये। तो आज इसका महत्व जानते हुए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हम श्रवण करने बैठे हैं यहां पर, वो श्रवण का असली मतलब क्या है, असली तात्पर्य क्या है। तो जब हम श्रवण करते हैं तो हमें श्रवण का मतलब यही पता होता है कि अगर मैं सुन रहा हूं तो सुनने का मतलब क्या है, सिर्फ सुनना, सिर्फ श्रवण। कभी कभी हम भक्तों से पूछते हैं आपने क्या किया, वो कहते हैं हमने कथा सुनी। तो क्या वो खाली सुनना हमारे लिए सुनना सफिशियंट है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर तीन चीजें लिखी है, श्रवण, मनः और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब पहले सुनना, कि हम मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, हम लोग सिद्धांत सुनते हैं, इसे सुनना। दूसरा मनः, मनः का मतलब रिफ्लेक्टिंग, अब इससे विचार करना। और तीसरा है निधिध्यासन, अप्लाइंग, अब इसे अपने जीवन में उतारना। तो दरअसल जब हम श्रवण बोलते हैं कि हम सुनने आए हैं यहां पर, तो सुनने का मतलब खाली सुनना नहीं होता, जो सुनना है श्रवण, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो आज हम जो जैसे अगर हम कुछ खाते हैं तो पहले हम खाते हैं, उसका मतलब होगा श्रवण। जब उसे चबाते हैं हम उसे, जैसे गायें जुगाली करती है, जब वो करते हैं तो उसका मतलब हो गया मनहा, अब उस पर विचार करना। और जब उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, ले जाते हैं अंदर, तो उसका मतलब हो गया निधिध्यासन। तो आज जो हम करेंगे रामानुजाचार्य जी की जीवन पर, आज हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना है, खाली सुनना नहीं है। आज हमें प्रैक्टिकल रूप से कुछ ऐसा करना है कि जो भी हम रामानुजाचार्य की टीचिंग्स हैं, या रामानुजाचार्य जो अपने चरित्र से, आचार्य अपने चरित्र से जो सिखा रहे हैं हमारे को, उसको हम किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकें। तो क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा श्रवण करने से पहले, कि जो हम श्रवण करते हैं ये कोई स्पेस फिलर नहीं है कि हमारे पास सुबह एक घंटा खाली होता है तो हम यहां पर आकर उसको स्पेस को फिल कर लें। ये स्पेस फिलर नहीं है, ये एक समय है हमारे पास जिसमें अपना जीवन पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य पाद, जैसे रामानुजाचार्य पाद के बारे में बताया जाता है कि रामानुजाचार्य पाद के पिता का नाम था केशव आचार्य और उनकी माता का नाम था कांतिमती। तो रामानुजाचार्य जो थे, दरअसल ये जो केशव आचार्य और कांतिमती, इनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी इनकी। तो इन्होंने बहुत तपस्या की, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान के प्रार्थना करने के कारण, इतनी तपस्या करने के कारण, स्वयं भगवान पार्थसारथी इनके सामने प्रकट हुए। राधा पार्थसारथी दिल्ली से गए थे स्वयं पार्थसारथी प्रकट हुए केशव आचार्य और कांतिमती के सामने, और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। और फिर जिस तरीके से, जैसे भारतवर्ष है, तो ये भारतवर्ष में जो सनातन धर्म है, जीव का जो सनातन धर्म है, भगवान का दास, दरअसल ये जो धर्म है ये खत्म हो रहा था, क्योंकि मायावाद का प्रचार बढ़ता जा रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान एक शून्य है, और भी अलग अलग तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे विचार यहां पर आ गए थे। और क्योंकि लोग अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे थे, बिल्कुल गंवा रहे थे, तो भगवान की कृपा से भगवान ने अपनी एक शक्ति को रामानुजाचार्य को कांतिमती के और केशव आचार्य के पुत्र के रूप में भेजा। तो जब रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, दरअसल बचपन से इनका नाम रामानुजाचार्य नहीं था, जब इनका जन्म हुआ तो जो इनकी बहन थी कांतिमती की, उनका नाम था शैशलापूर्ण। तो वो जो थी वो यमुनाचार्य के, आपने यमुनाचार्य का नाम सुना होगा, आचार्यों में एक बहुत विशेष आचार्य हैं यमुनाचार्य, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो यमुनाचार्य ने जब ये सुना कि एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा संतान उत्पन्न हुआ है जो एक हीरे की तरह चमक रहा है, तो यमुनाचार्य की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं और देखूं कि कौन है ये संतान, कैसा है ये बालक। तो जब यमुनाचार्य पहुंचे वहां पर, तो यमुनाचार्य ने देखा इस संतान को, इन बालक को, और यमुनाचार्य ने देखते ही बोला कि ये जो बालक है, इसका जो शरीर है, जो इसका कांति है शरीर की, ये स्वयं भगवान के जो राम के जो छोटे भाई हैं उनके समान है, इसलिए उन्होंने इनका नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण और राम अनुज का नाम भी, राम अनुज का मतलब है राम के छोटे भाई अनुज। तो जो रामानुजाचार्य थे, देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ये बचपन से ही अपने भक्ति के सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के हम चरित्र में देखते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जब बाल्यावस्था में ही थे तो बाल्यावस्था से ही वो भगवान की रथ यात्रा निकालते थे, तो उसी प्रकार से जो रामानुजाचार्य थे बचपन से ही उनकी दो चीजों में इच्छा थी, वैष्णव की सेवा में और भगवान की सेवा में। इन दो चीजों के अलावा उनकी किसी चीज में आसक्ति नहीं थी। और एक भगवान के शुद्ध भक्त थे कांचीपूर्ण, जो जिनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था बाह्य रूप से, जिनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था कांचीपूर्ण का, तो एक बार रामानुजाचार्य के लक्ष्मण के घर के सामने से कांचीपूर्ण निकल के जा रहे थे, पर लक्ष्मण समझ गए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो लक्ष्मण में ये इच्छा प्रकट हुई कि मैं इनकी सेवा करूं। तो एक बार बिना अपने माता पिता की अनुमति के लक्ष्मण ने ये जो कांचीपूर्ण है इनको अपने घर में बुलाया और इनकी सेवा की, इनको प्रसाद सर्व किया, इनके चरण धोए। तो कांचीपूर्ण ने बोला कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, मैं तो शूद्र हूं, एक शूद्र की सेवा करके आपको क्या मिलेगा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, एक वैष्णव, एक जो भक्त होता है वह कभी शूद्र नहीं होता। दरअसल एक जो वैष्णव है वो सभी ब्राह्मणों का गुरु होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, यहां पर बचपन से ही हमारे को टीचिंग्स दे रहे हैं रामानुजाचार्य कि एक वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है, और एक वैष्णव पे ये जन्म जाति ये निर्भर नहीं करती। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, वो राधा रमण मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे राधा रमण जी से, तो इतना प्रेम से प्रार्थना कर रहे थे कि जो वहां के गोस्वामी थे उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने इन शिष्यों को जाके बोला, दरअसल जब ये शिष्य आए थे तो जितने भी गोस्वामी सब इनको धिक्कारते थे कि तुम नीच हो, मलेच हो, तुम्हें भक्ति करने का अधिकार नहीं है। पर जब उन गोस्वामी ने देखा इनको भक्ति करते हुए इस भाव से, तो उन्होंने इन शिष्यों को आके बोला कि देखो, तुम इतनी भक्ति से, तुम इतनी श्रद्धा से राधा रमण से प्रार्थना कर रहे हो, तो अगले जन्म में तुम्हें एक गोस्वामी परिवार में जन्म मिलेगा और तुम राधा रमण की सेवा कर पाओगे। तो जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बात सुनी बहुत खुश हुए वो, कि पहली बार किसने उनको उनके बारे में कुछ अच्छा बोला था, और भागते भागते सब श्रील प्रभुपाद के पास पहुंचे और उन्हें प्रभुपाद को बताया बात कि प्रभुपाद इस प्रकार उस गोस्वामी ने कहा है कि आने वाले अगले जन्म में हमें गोस्वामी परिवार में जन्म मिलेगा और हम राधा रमण की सेवा कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि तुम जाओ और उस गोस्वामी को जाके बोलो कि अगर इस जन्म में पूरी श्रद्धा के साथ वो राधा रमण की अगर सेवा करता है तो अगला जन्म उसको एक मलेच्छ परिवार में मिलेगा और वो पूरा जीवन अपना व्यतीत करेगा चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को बढ़ाने में। तो ये क्योंकि भक्त का जन्म, जो एक वैष्णव है उसका जो जन्म है ये किसी भी कुल पर डिपेंड नहीं करता कि किस परिवार से बिलोंग करता है। तो तभी बताया था कि हमें वैष्णव की कभी पास्ट प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि उसने पिछले उसमें क्या किया है, पास्ट एक्टिविटीज क्या थी उसकी। तो एक बार इसी प्रकार से जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने दरअसल एक गुरु बनाए कुछ वैदिक मंत्रों को सीखने के लिए, वैदिक शास्त्र सीखने के लिए। तो उनको जो वैदिक शास्त्र सीखने के लिए उन्होंने गुरु बनाया, उनका नाम था यादव आचार्य। तो यादव आचार्य जिस जगह के गुरु थे, तो वहां के जो कांची के जो राजा थे, उस राजा की पुत्री के अंदर एक भूत घुस गया था। तो जब राजा का संदेश आया तो राजा ने यादव आचार्य गए रामानुजाचार्य के साथ, लक्ष्मण के साथ वहां पर, और उन्होंने वहां पर गए उस भूत को, और जैसे उस भूत के सामने पहुंचे, वहां पर उस बेटे के सामने पहुंचे जिसके अंदर भूत था, तो वो भूत अंदर से चिल्लाना शुरू हुआ और भूत हंसते हंसते बोला कि तू मुझे बाहर निकालेगा, तू तो पिछले जन्म में एक निम्न, मतलब निम्न कुल, निम्न जन्म था तेरा, तो एक छोटा अधम जन्म था, एक वैष्णव का उच्चिष्ट पाने के कारण तुझे एक पंडित का, एक वैष्णव का जन्म प्राप्त हुआ है, तू मेरी मदद कैसे कर सकता है? ये जो तेरा शिष्य पीछे खड़ा है रामानुजा लक्ष्मण, अगर ये अपने चरणों को धोकर मेरे ऊपर जल छिड़केगा तो मैं तुरंत इस लड़की के शरीर से निकल जाऊंगा बाहर। तो ये जो बचपन से ही सिम्टम्स, ये जो रामानुजाचार्य दिखाए, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। तो जब यादवाचार्य ने बात सुनी उस भूत से, तो क्योंकि ये पूरा जो जगत है ये ईर्षा द्वेष से भरा हुआ है, तो उनके अंदर एक ईर्षा जागी रामानुजाचार्य के लिए। तो इस तरीके से एक बार यादवाचार्य के एक शिष्य थे जो यादवाचार्य से आके पूछते हैं, उन्हें एक शब्द पढ़ा शास्त्र में कप्यासम, और उन्होंने पूछा यादवाचार्य से कि इसका मतलब क्या होता है, कप्यासम का मतलब क्या है, कि भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो आंखें हैं, ये कप्यासम की तरह हैं। तो यादवाचार्य ने शंकराचार्य की टीका को प्रेजेंट करते हुए बोला कि कप्यासम का मतलब है द एनस ऑफ अ मंकी, एक बंदर का गुदा। तो जब रामानुजाचार्य ने इस बात को सुना तो रामानुजाचार्य उस समय कुछ बोल नहीं पाए, पर उनकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए, क्योंकि जो भगवान की व्याख्या की गई थी ये बहुत गलत थी। तो जब उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे तो वो गरम गरम आंसू की बूंदें यादवाचार्य के पैरों पे गिरी, और यादवाचार्य ने पूछा रामानुजाचार्य से कि क्या बात है, बिना किसी कारण के आप क्यों रो रहे हो? तो रामानुजाचार्य ने बताया उनको कि जो आपने टीका की है ये भगवान के नेत्रों की, ये गलत टीका है। तो याद आचार्य को बहुत गुस्सा आया इस बात से कि शंकराचार्य के भाष्य में भी तुम गलती निकालते हो, अगर तुम ही लगता है कि तुम इसके बड़े ज्ञाता हो तो तुम बताओ इसका मतलब क्या है। तो रामानुजाचार्य ने कप्यासम का मतलब बताया कि कप्यासम का मतलब है ब्लॉसम बाय द सन, कि भगवान के नेत्र सूर्य के समान, जब सूर्य खिलता है वहां पर तो जिस प्रकार लाल होता है उस प्रकार भगवान के नेत्र हैं। तो जब इस टीका को यादवाचार्य ने सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये जो बालक है ये एक दिन जब बड़ा होगा तो ये शंकराचार्य के जितने भी सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों को काटेगा। और जिस प्रकार, क्योंकि जो रामानुजाचार्य थे धीरे धीरे करके यादवाचार्य के इन सिद्धांतों को काटते जा रहे थे, तो जो यादवाचार्य के हृदय के अंदर जो अग्नि थी ईर्षा द्वेष की वो बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन उन्होंने, जब एक और इंसिडेंट हुआ कि यादवाचार्य के को शिष्य ने एक उनसे तैत्तरीय उपनिषद के किसी श्लोक का मतलब पूछा, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान इम्पर्सनल है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, पर रामानुजाचार्य से यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़े कि भगवान का फॉर्म है, भगवान का आकार है। अब जो हुआ, अब जो बात इस लेवल तक आ गई थी कि यादवाचार्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक मर्डर प्लॉट किया कि किस प्रकार अब वो रामानुजाचार्य को मार सके। तो उन्होंने ये मर्डर प्लॉट करते हुए ये प्लान बनाया उन्होंने कि किस प्रकार हम लोग रामानुजाचार्य को प्रयाग में लेके जाएंगे और किस प्रकार इनको डुबा के वहां पर मार देंगे। तो ये जो रामानुजाचार्य के जो एक कजन ब्रदर थे, उनको जब ये बात पता लगी तो उन्होंने इनडायरेक्टली रामानुजाचार्य को बता दी और रामानुजाचार्य वहां से भाग गए। तो जब रामानुजाचार्य वहां से भागते हैं तो भागते भागते, क्योंकि देखिए मेन रास्ते से नहीं भागे थे, अब जंगलों के रास्ते से वो भागे थे, तो जंगलों के रास्ते से भागते भागते वो एक जगह थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो उन्होंने देखा पीछे से एक हंटर, एक शिकारी आ रहा था अपनी पत्नी के साथ। तो जब वो शिकारी को देखा तो रामानुजाचार्य सोचा कि अब मैं इनके साथ थोड़ा सा ट्रेवल कर सकता हूं, थोड़ा आगे जा सकता हूं। तो थोड़ा आगे वो इस शिकारी के साथ आगे चले गए। तो थोड़े दूर जाकर जब वो शिकारी रुके तो उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि ठीक है मैं पानी ले आता हूं आपकी पत्नी के लिए। तो उस हंटर ने, उस शिकारी ने बोला कि नहीं आप रुको, अभी बहुत रात है, इस समय बाहर मत जाओ, जब सुबह होगी तो पानी ले आना। तो जैसे ही सुबह होती है और रामानुजाचार्य पानी ले जाने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य बिल्कुल कुएं के अंदर जाते हैं और अपने हाथ में पानी भर के लेके आते हैं उसकी पत्नी के लिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तीन बार पानी बाहर ले आते हैं, चौथी बार पानी लेने के जब अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो कहां पर हैं, अपने गांव में हैं। उस जंगल से निकल के वो अपने गांव में पहुंच जाते हैं जब वो चौथी बार पानी निकाल के उस कुएं से बाहर आते हैं तो वहां। और फिर जब वो बात ये अपने जो उनके जो जो मित्र थे कांचीपूर्ण उनको बताते हैं, तो कांचीपूर्ण उन्हें बताते हैं कि वो जो शिकारी थे उनकी पत्नी थी, दरअसल वो शिकारी और उनकी पत्नी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, स्वयं लक्ष्मी और नारायण थे। और स्वयं लक्ष्मी नारायण बचाने आए थे अपने भक्त को। तो ये रामानुजाचार्य का महत्व है कि स्वयं भगवान अपने भक्त की सेवा करने के लिए कितने उत्साहित हैं, और भगवान देख नहीं सकते कि उनकी भक्त के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कुछ हानि आए। तो जब जिस प्रकार जब रामानुजाचार्य की ग्लोरिफिकेशन गुणगान ऐसे बढ़ता जा रहा था, तो ये गुणगान एक बार यमुनाचार्य के पास पहुंचा और यमुनाचार्य में बहुत इच्छा हुई कि अब वो इस बालक से मिलें, क्योंकि अब ये बड़े हो गए थे। जब पहले नामकरण किया था तो बिल्कुल छोटे थे, बालक थे, तो अब वो बड़े हो गए थे। तो यमुनाचार्य ने कुछ प्लानिंग बनाई कि किस प्रकार अपने शिष्य को भेजकर वो इनको बुला सके। तो जब वो बुलाने के लिए भेजते हैं अपने शिष्य को, तो दरअसल एक इनडायरेक्ट बेस से बुलाते हैं उसको कि किस प्रकार यमुनाचार्य ने आपको बुलाया है कुछ स्तुतियां करने के लिए मंत्रों की। तो जब ये स्तुतियां करने के लिए वो प्लानिंग करते हैं कि अब वो यमुनाचार्य के पास जाएंगे, तो जाते वक्त रास्ते में उन्हें पता लगता है कि यमुनाचार्य डिसअपियर हो गए, शारीरिक रूप से वो अब नहीं रहे। तो जब ये बात सुनते हैं तो जो शिष्य आए थे और रामानुजाचार्य दोनों बहुत दुखी होते हैं। पर अब उनका एक मेन कंसर्न होता है कि यमुनाचार्य के शरीर को कोई भी जो मायावादी या कोई भी भ्रमवादी, ऐसा कोई भी व्यक्ति यमुनाचार्य के शरीर को ना छुए। तो जल्दी से रामानुजाचार्य और वो भक्त यमुनाचार्य के शरीर के पास पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यमुनाचार्य की तीन उंगलियां बंद हैं, केवल एक उंगली खुली थी, तीन उंगलियां बंद थी। तो जब ये देखते हैं रामानुजाचार्य, तो वो आसपास के लोगों से और अन्य शिष्यों से पूछते हैं कि कैसे है ये, क्या ये हमेशा ही ऐसे था या आज कुछ नया ऐसा है। तो उनके शिष्यों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था। पर रामानुजाचार्य क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो वो उस इंडिकेशन को समझ गए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था, यमुनाचार्य ये बताना चाह रहे थे कि मैं केवल एक काम पूरा कर चुका हूं, तीन काम मेरे अभी भी अनफुलफिल्ड हैं जो पूरे नहीं हुए, और वो पूरे रामानुजाचार्य को करने हैं। तो वो तीन काम क्या थे? पहला था, मैं वैष्णवता के पथ का अनुसरण करूंगा, कि मैं जो वैष्णव समाज है इसके पथ को इस फॉलो करूंगा, और जितने भी लोग हैं जो इस अज्ञानता में फंसे हुए हैं उनका मैं उद्धार करूंगा, उन्हें मैं इस अज्ञानता से बाहर निकालूंगा। तो जैसे ही ये पहली शपथ ली रामानुजाचार्य ने, तो यमुनाचार्य की एक उंगली अपने आप खुल गई। फिर दूसरी शपथ उन्हें ली कि मैं वेदांत सूत्र के ऊपर अपनी टीका की रचना करूंगा। जैसे ये दूसरी शपथ उन्होंने ली, यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी खुल गई। और फिर तीसरी शपथ उन्होंने ली कि मैं मुख्य पुराणों के आधार पर एक ऐसी डिक्शनरी की रचना करूंगा जिसमें परम भगवान और जीवात्मा के स्वभाव और चरित्र का विवरण होगा, जो पराशर मुनि द्वारा लिखित है। तो जब ये तीसरी शपथ उन्होंने ली यमुनाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, तो यमुनाचार्य की तीसरी उंगली भी खुल गई। तो जब उपस्थित वैष्णवों ने यह देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब आने वाले उसमें ये हमारे आचार्य बनेंगे। तो हालांकि क्योंकि रामानुजाचार्य उस समय दीक्षित नहीं थे, यमुनाचार्य से वो सिर्फ शिक्षा ले रहे थे, दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने कुछ भी। तो उन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र कांचीपूर्ण से कंसल्ट किया कि मैं आप किससे दीक्षा ले सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि जो यमुनाचार्य के शिष्य हैं महापूर्ण, आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। तो उनसे दीक्षा लेने के बाद जितने भी वैष्णव थे वहां पर, वैष्णव समाज, सभी वैष्णवों ने प्रार्थना की रामानुजाचार्य से कि अब आप आचार्य बनिए और सभी जितने लोग हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए। तो इससे हमारे को वैष्णवों की इस प्रार्थना से रामानुजाचार्य ने आचार्य की पदवी स्वीकार की। और इससे एक चीज हमारे बहुत सीखने के लिए मिलती है कि हमें भी अगर कोई पोस्ट मिलती है, कोई पोजिशन मिलती है, तो हमें किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में उसको लेना चाहिए। पहली सिचुएशन ये कि अगर हमारे में बहुत ईगर डिजायर है वैष्णवों की सेवा की, बहुत लालसा है हमारे अंदर कि मैं वैष्णवों की सेवा कर सकता हूं इस लालसा में, और दूसरी इच्छा ये है कि अगर वैष्णव हमारे से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कृष्ण कृष्णदास कविराज जी के हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार वो चैतन्य चरितामृत लिखना नहीं चाहते थे, परंतु वैष्णवों ने उनसे इतनी प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो हमें भी अगर हम कोई पोस्ट देखिए, हमें किसी पोस्ट पोजीशन के पीछे, किसी फेम, किसी यश के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम इनके पीछे भागेंगे तो हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य से हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो ये रामानुजाचार्य बहुत अच्छी टीचिंग्स दे रहे हैं हमारे को यहाँ पर कि किस सिचुएशन में हम योग्य बनते हैं कि हम किसी पोस्ट को स्वीकार करें। तो इसी प्रकार रामानुजाचार्य, एक बार रामानुजाचार्य के पास एक ब्राह्मण आते हैं और वो ब्राह्मण बहुत सिंपल, बहुत सरल ब्राह्मण होते हैं। तो रामानुजाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, तो मैं आपको शरणागत करता हूं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं आप सच में मुझे शरणागत करते हो? वो ब्राह्मण कहते हैं हाँ करता हूं। तो वो कहते हैं आपको फिर मेरी एक सेवा करनी पड़ेगी। तो वो ब्राह्मण ने बोला हाँ मैं आपकी सभी सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्या सेवा है? तो रामानुजाचार्य ने बोला कि देखिए सारे शास्त्र कहते हैं कि अगर वैष्णवों के चरणों का जल अगर हम अपने सिर पर डालते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है, हमारा उद्धार होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज अपने चरणों का जल लाकर मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं उसे अपने सिर पर डाल सकूं। अब ये ब्राह्मण इतने सिंपल थे, इतने सरल थे और वो गुरु को इतने शरणागत थे कि उन्होंने मना नहीं किया इस बात के लिए। तो दरअसल ये ऑर्डर, ये जो गुरु का आदेश है ये बहुत मुश्किल है, और ऐसा नहीं कि गुरु हर अपने शिष्य को ऐसे ही आदेश देते हैं। गुरु योग्यता पहचान लेते हैं कि किस शिष्य की क्या योग्यता है और उसे क्या आदेश देना चाहिए। तो जब इस ऑर्डर का उन्होंने पालन किया तो उनका दरअसल उनका सरेंडर, उनकी शरणागति का पता लगा कि कितने शरणागत हैं वो। कि उस ब्राह्मण को अपने जीवन की कुछ भी नहीं पड़ी थी कि चाहे मैं ये कार्य करके नरक में चले जाऊं पर मेरी जो गुरु की सेवा है वो सेवा जरूर होनी चाहिए। तो एक दिन हुआ कि रामानुजाचार्य, क्योंकि रामानुजाचार्य का मुख्य कार्य था कि वो वैष्णविज्म का किस प्रकार भक्ति बढ़ाई जाए और किस प्रकार जीव का क्या कर्तव्य है, इसी मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है और जीव का असली क्या कर्तव्य है, इसका प्रचार करते थे वो। तो एक बार ऐसे ही प्रचार में जुड़े थे रामानुजाचार्य और सुबह से प्रचार शुरू किया और रात हो गई। तो जब रात हो गई तो रात को, देर रात को रामानुजाचार्य अपने आश्रम में आते हैं जहां पर रहते थे। तो उन्होंने देखा सभी भक्त जितने थे मंदिर के सब सो रहे थे, मठ के लोग, पर ये ब्राह्मण जाग रहा था। तो रामानुजाचार्य ने पूछा इन ब्राह्मण से कि आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हो, आप सोए क्यों नहीं? तो उस ब्राह्मण ने एक मटका रामानुजाचार्य को दिया। उन्होंने बोला कि देखिए आपने मुझे सेवा दी थी कि मैं तब तक प्रसाद नहीं पाऊंगा जब तक मैं आपकी सेवा करूंगा, तो मैंने अपने चरणों को धोकर उस पानी को इस कलश में रखा हुआ है कि जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं प्रसाद भी नहीं पा सकता सुबह का। तो जब उस ब्राह्मण की इस विनम्रता को देखा रामानुजाचार्य ने तो उन्होंने उस मटकी को फोड़ दिया और उनको ये पता लगा कि ये व्यक्ति योग्य है शिष्य बनने के, ये शिष्य बनने की क्वालिफिकेशन है कि अगर हम शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें हर प्रकार के टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, कि गुरु हमारे से किसी भी प्रकार का टेस्ट कभी भी ले सकते हैं। और दरअसल अगर देखिए कुछ लोग गोपी भाव की बात करते हैं कि हम लोग गोपी बनना चाहते हैं, भगवान की दासी बनना चाहते हैं, पर असली गोपी भाव का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। गोपी भाव का मतलब है सेल्फलेस सर्विस, अपने लिए कुछ नहीं सोचना। जिस प्रकार भगवान के सिर में एक बार दर्द कर रहा था तो भगवान नारद मुनि ने पूछा कि बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी, तो भगवान ने बोला देखो कोई भक्त अगर चरणों की धूली मुझे दे देगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि हर ब्राह्मण के पास गए, हर भक्त के पास गए, सबने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, अगर हम हमारे चरणों की धूली अगर भगवान के सिर पर लग गई हम नरक में चले जाएंगे। तो भगवान नारद मुनि इतने निराश हुए कि निराश अवस्था में वो भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान को सारी सिचुएशन समझाई कि ऐसा हुआ है। तो भगवान ने बोला कि क्या तुम गोपियों के पास गए थे, गोपियां मेरी शुद्ध भक्त हैं, तुम उनके पास जाओ वो मना नहीं करेंगी। तो जैसे ही भगवान गोपियों के पास जाते हैं गोपियां अपने पैरों से रस निकाल के खुद नारद मुनि को देती हैं कि अगर हम नरक में जाती हैं तो चली जाए कोई बात नहीं पर भगवान खुश होने चाहिए। तो दरअसल ये सेल्फलेस सर्विस है और ये शरणागति है, इसे कहते हैं गोपी भाव। हमारे नजरिए में गोपी भाव का मतलब एक सिर्फ एक स्त्री बनना है बस, वो स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है तो हमें लगता है कि वो गोपी भाव है, पर ये गोपी भाव नहीं है। गोपी भाव का असली मतलब है सेल्फलेस, अपने लिए कुछ नहीं सोचना, और ये यहां पर इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे, देखिए अभी कोई भी शुद्ध नहीं है, तो अगर हम शुद्ध नहीं है तो हमें दो चीजों में से एक चीजों में हमें शरण चाहिए। या तो ये गुरु के सामने कमिट कर लें कि मैं पतित हूं और जैसे आप मुझे डील करना चाहें, जैसे आप मुझे ठीक करना चाहें, आप वैसे ठीक कीजिए, या फिर गुरु को पूर्ण शरणागत कर दें, जैसे गुरु कहें वैसे करें। पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए जो सिर्फ सोने का दिखावा कर रहा है, जो भक्त नहीं है पर दिखावा कर रहा है भक्त है। ऐसा व्यक्ति ना सो पाता है ना जाग पाता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा इससे, यहां पर इस कथा से यहां पर, कि किस प्रकार हमें ये जो मूड है सेल्फलेस सर्विस का, ये डेवलप करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार रामानुजाचार्य जाने जाते थे अपने स्ट्रांग प्रीचिंग के लिए, दरअसल हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं ये लायन प्रीचर थे, एक्चुअली शेर की तरह प्रचार करते थे। तो रामानुजाचार्य का जो मुख्य प्रचार था वो जितने भी मायावादी थे उनका खंडन करना था। अभी आप में से जितने भक्त कुंभ में गए होंगे तो आपने देखा होगा कितने मायावादी हैं वहां पर फिर भी मायावादियों के बीच में हमें कुछ वैष्णव नजर आ जाते हैं, कीर्तन करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। पर रामानुजाचार्य के समय में ये नहीं था, उस समय शंकराचार्य का इतना प्रचार था कि हर तरफ मायावादी मायावाद था, जो वैष्णविज्म था वो बहुत कम था। तो उस स्थिति में रामानुजाचार्य जब मायावादियों को खंडन करते तो बहुत बड़ी बात थी। तो दरअसल ये मायावादियों का सारा प्रचार ही ये होता है कि भगवान या तो निराकार है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, या फिर जो भगवान का जो शरीर है ये सतोगुण का बना है, और जो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब भौतिक हैं। तो ये मायावादियों का प्रचार होता है। मायावादी एक बहुत एक उदाहरण देते हैं इसमें, एक तिनके का। जिस प्रकार एक तिनके से एक तिनका जब निकाला जाता है, मान लीजिए आपको कोई कांटा चुभ जाए, तो कांटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक दूसरा कांटा चाहिए। पर जब एक कांटे से आप दूसरा कांटा निकालते हैं तो फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। तो मायावादियों का ये सिद्धांत है कि हम भगवान के, हमें जप विग्रह की सेवा, वैष्णव की सेवा, ये तब तक करनी है जब तक हमारे को भगवान की कृपा प्राप्त हो, और हमारे जो मिसकंसेप्शंस हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, या फिर ये भौतिक संसार रहने की स्थान नहीं है, हमें ब्रह्म में लीन होना चाहिए, जब तक ये सिद्धांत हमें ना हासिल हो जाए तब तक हमें इन चीजों को अपनाना चाहिए। उसके बाद ये सारी चीजें क्या है, भौतिक है, इन चीजों की जरूरत नहीं है। उसके बाद वैष्णव सेवा की, हरिनाम की, विग्रह की सेवा, इनकी जरूरत नहीं है। तो ये मायावादी मुख्य रूप से प्रचार करते हैं, और रामानुजाचार्य इसका खंडन करते हुए ये प्रचार करते थे कि जो जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो दास की है, और उसे सेवा करनी है, वो सेवा करके ही केवल खुश हो सकता है। तो इस प्रकार एक बार एक मायावादी थे, उनका नाम था यज्ञ आचार्य। तो यज्ञ मूर्ति उनका नाम था, क्योंकि वो आचार्य थे मायावादियों के, इसलिए उनको यज्ञाचार्य भी बोला जाता था। तो ये यज्ञ मूर्ति जिस स्थान पर भी जाते थे, ट्रेवल करते थे, उनके साथ एक उनकी बैलगाड़ी चलती थी, और वो बैलगाड़ी पूरी भरी होती थी मायावादी सिद्धांत से, उसमें शास्त्र रखे होते थे लॉजिक्स के। तो जब इस यज्ञ मूर्ति को पता लगा कि रामानुजाचार्य नामक एक श्रेष्ठ वैष्णव है जो भक्ति कल्ट का प्रचार कर रहे हैं, तो उस यज्ञ मूर्ति ने सोचा कि अगर मैं इनका इसका खंडन कर देता हूं तो जितने भी लोग हैं अपने आप ही नेचुरली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक बार इसी भावना से यज्ञ मूर्ति रामानुजाचार्य के पास आते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप आओ मेरे साथ डिबेट करो और मुझे हराओ, और या फिर आप, मैं आपको हराऊंगा। तो जब रामानुजाचार्य इस बात को सुनते हैं तो रामानुजाचार्य कोई रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनको किसी डिबेट में, किसी प्रकार के तर्क में कोई रुचि नहीं होती। शास्त्रार्थ, किसी प्रकार के शास्त्रार्थ में उनकी कोई रुचि नहीं होती, वाद विवाद, किसी प्रकार के वाद विवाद में उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो जब रामानुजाचार्य को यह पता लगा तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं हार मानने के लिए तैयार हूं, पर मैं आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। तो जब यज्ञ यज्ञ मूर्ति ने जब ये सुना तो यज्ञ मूर्ति माना नहीं इस बात पे। यज्ञ मूर्ति ने कहा कि अगर आप हार मानने के लिए तैयार हो तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, मायावाद को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा आपको, इस मायावाद का प्रचार करना पड़ेगा। तो जब रामानुजाचार्य ने यह सुना कि उन्हें मायावाद का प्रचार करना पड़ेगा, तब उन्होंने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम किससे डिबेट करते हैं, कोई वाद विवाद करते हैं, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे करना चाहिए। हम जब किससे तर्क करते हैं या वाद विवाद करते हैं तो उसमें हमारी भावना ये होती है कि मेरी हार ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, सब लोग ये ना समझे कि मैं कितना, मतलब मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं। पर रामानुजाचार्य यहां पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने तब तक डिबेट नहीं की जब तक वैष्णव सिद्धांत सेफ था, पर जब उन्होंने देखा कि उनको इस मायावाद सिद्धांत का प्रचार करना पड़ेगा तो वो इस डिबेट के लिए, इस तर्क के लिए तैयार हो गए। तो बताया जाता है कि जब उन्होंने तर्क, ये डिबेट शुरू हुई तो ये डिबेट 17 दिन तक चली नॉन स्टॉप। कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। 17 दिन तक ये डिबेट नॉन स्टॉप चली, और जब 17 दिन चल रहा था तो रामानुजाचार्य बिल्कुल हार चुके थे। यज्ञ मूर्ति ने रामानुजाचार्य को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, इतना टैलेंटेड था वो। और रामानुजाचार्य बिल्कुल डिप्रेस्ड, बिल्कुल मायूस। और इस मायूसी की अवस्था में जब वो रात को घर जाते हैं तो जो उनके जो आराध्य देव थे, देवराज जो उनके डीटीज थे, उनसे वो प्रार्थना करते हैं। अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, ध्यान रखेगा। वो डिप्रेस इसलिए नहीं थे कि उनकी बेइज्जती हो गई, वो डिप्रेस इसलिए थे कि वैष्णव धर्म झुक रहा है। अगर मैं हार गया तो ये इसका जो धर्म है, मायावाद का प्रचार बढ़ेगा, वैष्णव धर्म खत्म हो जाएगा। इस बात से बहुत डिप्रेस थे। और इस अवस्था में उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि ताकि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं जीत सकूं इस डिबेट को। तो भगवान स्वयं देवराज बोले और उन्हें बताया कि तुम निश्चित रूप से कल तुम्हारी विजय होगी। तो जब ये बात रामानुजाचार्य सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि अब भगवान ने आश्वासन दे दिया। देखिए, अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझ पर कृपा करो, मैं पास हो जाऊं अपने एग्जाम्स में, और भगवान बोल दे राधिका रमन जी की ठीक है तुम पास हो जाओगे, पर हमारे अंदर फिर भी डाउट बना रहेगा, डर बना रहेगा कि पता नहीं पीछे से आवाज आ रही थी या सच में भगवान बोल रहे थे। पर रामानुजाचार्य की वो अवस्था नहीं थी, उनको बिल्कुल क्लैरिफाई था, बिल्कुल उनको कि ये भगवान है, भगवान बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरी विजय होगी। तो जब रामानुजाचार्य ने सुना तो रामानुजाचार्य जब अगले दिन पहुंचे तो रामानुजाचार्य इतने एफुलजेंट थे, इतना तेज निकल रहा था उनके शरीर से कि जब यज्ञ मूर्ति ने उनको देखा तो यज्ञ मूर्ति डिप्रेस हो गया। यज्ञ मूर्ति ने सोचा कि कल मैंने इस व्यक्ति की ऐसी हालत की थी कि ये इतना मायूस था, इतना उदास था, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के इंसिडेंट में भी, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना तेज प्रकट किया था तो कौन थे मायावादी? प्रकाशानंद सरस्वती। कितने शिष्यों के साथ थे? 10,000 वैष्णव मायावादियों के साथ प्रकाशानंद सरस्वती वैष्णव बन गए। कुछ बोला था चैतन्य महाप्रभु ने? नहीं, केवल उनके तेज को देखकर, वो तेज को देखकर इतना आकर्षित हो गए थे। तो यज्ञ मूर्ति रामानुजाचार्य के तेज को देखकर इतना आकर्षित हो गए कि बिना कुछ बोले, बिना किसी वाद विवाद के, उन्होंने रामानुजाचार्य को सरेंडर कर दिया कि मैं हार स्वीकार करता हूं और मैं आपको शरणागत होता हूं, आज से आप मेरे गुरु हैं। तो जब रामानुजाचार्य ने यह बात सुनी तो रामानुजाचार्य को इतनी खुशी हुई और उनको पता लगा कि यह भगवान की कृपा है, दिस इज मर्सी ऑफ कृष्णा। तो कुछ इसमें बताया गया कि मतलब रामानुजाचार्य बता रहे थे कि भगवान की कृपा से इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो सकता है। और वैष्णव के जीवन में अगर हम कृष्ण भावना में इसको समझना चाहते हैं तो कृष्ण भावना में इसको समझने के लिए भी हमें क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए। बिना भगवान की कृपा के हम लोग कृष्ण भावना में इसको नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम शास्त्र पढ़ लें बहुत सारे अलग अलग तरीके के, इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तो नहीं, ये हमारा भ्रम है, इससे भगवान की हमारे को कृपा प्राप्त नहीं होगी। शास्त्र पढ़ के अधिकांश लोग एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, जब पढ़तव्यम तब मर्तव्यम, ना पढ़तव्यम तब मर्तव्यम, तो जीव खटाखट क्यों कर्तव्यम, कि जब पढ़ के भी मरना है, नहीं पढ़ के भी मरना है, तो पढ़ने का फायदा ही क्या है। तो अधिकांश लोग पढ़ के इस कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, कुछ भक्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती, वो सोचते हैं कि ये पढ़ने का क्या फायदा है जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा इसमें से, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान की कृपा की प्रार्थना नहीं की होती, कभी हेल्पलेस सिचुएशन में भगवान के पास नहीं गए होते। तो ये हमें यहां से देखने के लिए मिल रहा है कि जो यज्ञ मूर्ति थे ये, मतलब ये नहीं बोल सकते कि इनके अंदर अहंकार था, ये दरअसल ये अहंकार के समुद्र थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा जो अहंकार का समुद्र था, वो ऐसे वैष्णव के संपर्क में आके बिल्कुल कैसे बदल जाता है, ये भगवान की एक विशेष कृपा है जो वैष्णव के माध्यम से हमारे पास आती है। और ये चीज हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं एक अगली स्टोरी से, जिसमें दरअसल ये रामानुजाचार्य की स्टोरी है, जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में थे। तो श्रीरंगम में रामानुजाचार्य जब थे वहां पर, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं भोजन पे, मेरा एक शिष्य यहां पर पास में रहता है, उसका नाम है यज्ञेश, तो तुम उसके घर में जाओ, उन्हें बताओ कि रामानुजाचार्य आपके घर में आना चाहते हैं भोजन के लिए। तो सारे शिष्य उस भक्त के पास जाते हैं, उन्होंने बताते हैं ये बात। तो जब उन्हें बात बताते हैं तो भक्त इतना खुशी से पागल हो जाते हैं, इतना खुशी से पागल हो जाते हैं कि पूरी तैयारियों में लग जाते हैं। तो जब शिष्य देखते हैं उस भक्त की उस एटीट्यूड को, तो वो जाते हैं रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य पूछते हैं कि तुम गए थे उस भक्त के घर? उन्होंने कहा हां गया था। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा जब मैंने बताया कि आप आ रहे हैं, तो वो भक्त तैयारी में इतना पागल हो गया कि वो बिल्कुल वो एक्सेसरी में बिल्कुल पागल हो गया और सारी तैयारियों में लग गया। रामानुजाचार्य ने पूछा कि उसने तुम्हारी कुछ सेवा की क्या? तो शिष्यों ने बोला नहीं, हमारी सेवा तो नहीं की। तो रामानुजाचार्य ने बोला ठीक है, हम उनके घर नहीं जाएंगे, मेरा एक गरीब भक्त यहां पर रहता है, उसका नाम है भारद्वाज, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, लक्ष्मी के साथ यहां पर, हम उनके घर भोजन पे जाएंगे। तो रामानुजाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ भारद्वाज के घर गए, और भारद्वाज के घर गए तो जब रामानुजाचार्य वहां पर जाते हैं भारद्वाज के घर में, तो उस समय भारद्वाज बाहर भिक्षा के लिए गए होते हैं। दरअसल ये इतने गरीब होते हैं कि इनके पास एक ही कपड़ा जोड़ा होता है सिर्फ, और घर में इनके सर्च करने पे भी एक चावल का दाना नहीं मिलेगा, इतने गरीब होते हैं ये लोग। तो जब रामानुजाचार्य पहुंचते हैं अपने सभी शिष्यों के साथ उनके घर में, तो उनकी पत्नी देखती है कि मेरे गुरु आए हैं, उनकी पत्नी पूरा आदर सत्कार करती है अपने गुरु का, और उन्हें बिठाती है और उन्हें उनको स्नान वगैरह करने के लिए निमंत्रित करती है, और उनकी भोजन की तैयारी शुरू करती है। तो जब भोजन की तैयारी के लिए वो रसोई में जाती है, तो देखती है अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि कितने दिनों से तो उन्होंने ही कुछ नहीं खाया होता। तो जब ये स्थिति पत्नी देखती है तो वो बहुत उदास होती है, वो कहती है कि मैं किस प्रकार अपने गुरु की सेवा कर सकूं। तो उस ये याद आता है कि एक मर्चेंट, एक यहां पर वैश्य है जिसका, जो बहुत धनवान है, और वो हमेशा मुझे बुरी नजरों से देखता है, मुझसे संबंध रखना चाहता है, क्योंकि ये लक्ष्मी बहुत चेस्ट वुमेन थी, तो ये कभी भी उसके बहकावे में नहीं आती थी। पर जब लक्ष्मी ने देखा कि अब मेरी गुरु की मुझे सेवा करनी है, तो ऐसी चेस्टिटी का, ऐसे सत्यत्व का क्या फायदा जब मैं अपने गुरु की सेवा भी ना कर सकूं। तो जो लक्ष्मी है वो उस वैश्य के पास जाती है और उसे प्रपोज करती है कि मैं आज रात को तुम्हारे घर में आ जाऊंगी, पर इसके बदले में तुम मेरे गुरु घर में आए हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, अगर तुम उनकी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तैयार हूं। तो जब वैश्य इस बात को सुनता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कामी था वो, और एक कामी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा सुख क्या है कि उसका काम पूरा हो रहा है। तो जब इस बात को सुनकर जब वो वैश्य सारा अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन बनाने की जो सामग्री होती है वो घर में भिजवाता है, और लक्ष्मी एक बहुत सुंदर फीस्ट बनाती है अपने गुरु के लिए और उनके शिष्यों के लिए। तो जब ये फीस्ट प्रसाद पा रहे होते हैं, तो उस समय भारद्वाज घर में आते हैं, और जब वो देखते हैं कि गुरु इतनी अच्छी फीस पा रहे हैं, तो लक्ष्मी से पूछते हैं कि ये अरेंजमेंट कैसे किया, ये तैयारी कैसे की। तो लक्ष्मी ऐसा नहीं कि छुपाती है, अपने पति से सब कुछ बता देती है। वो बताते कि इस प्रकार वो जो वैश्य था वो मुझे हमेशा बुरी नजरों से देखता था, पर गुरु घर में आए थे और उनको सेवा करने के लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं था, तो मैंने अपने आप को, अपनी जो चेस्टिटी थी, मैं इसको बेचने के लिए तैयार हो गई, और इसके बदले मैं सारा सामान लाई हूं। तो जब भारद्वाज ने यह सुना तो वो खुशी के मारे पागल हो गए और नाचना शुरू कर दिया, और वो अपने आप को धन्य मान रहे थे कि ऐसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई है जो गुरु की सेवा के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार है, इतना खुश हुए वो। तो जब वो ये बातचीत कर रहे थे तो रामानुजाचार्य ने ये बातें सुन ली, और रामानुजाचार्य ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने लक्ष्मी को बोला कि तुम जब रात को उस वैश्य के पास जाओगी तो ये मेरा महाप्रसाद है, ये उस वैश्य को दे देना। तो लक्ष्मी जब रात को उस वैश्य के पास जाती है तो ये पूरा महाप्रसाद रामानुजाचार्य को लेके जाती है, और उस रामानुजाचार्य उस वैश्य के पास लेके जाती है, उसे बताती है कि मेरे गुरु का महाप्रसाद है रामानुजाचार्य का, आप इसे स्वीकार कीजिए, उसके बाद जो आपकी इच्छा है मैं उसे पूरी करूंगी। तो जब वो वैश्य रामानुजाचार्य के महाप्रसाद को पाता है तो वो प्रसाद पाने के बाद नहीं, वो प्रसाद पाते पाते ही उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी सारी कामों की इच्छाएं हृदय से निकल जाती हैं, और वो लक्ष्मी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने के लिए मना कर देता है, बल्कि वो लक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि आपके गुरु कौन है, मुझे उनके पास लेके जाइए, मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूं। तो ये एक शुद्ध वैष्णव का प्रभाव है, ये रामानुजाचार्य का प्रभाव है कि रामानुजाचार्य के दर्शन मात्र से, उनके उच्चिष्ट से, केवल उनके उनके मुख से एक शब्द सुनने मात्र से बड़े बड़े मायावादी, बड़े बड़े कर्मी लोग वैष्णव बन जाते हैं। ये एक शुद्ध वैष्णव का लक्षण होता है। तो किस प्रकार वो जो ब्राह्मण जो वैश्य था वो भी बदल गया। तो यहां से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति में भी काफी प्रकार की सिचुएशंस आती हैं। जैसे ये जो चेस्टिटी का उदाहरण, जैसे कृष्णा में हम पढ़ते हैं, कृष्णा बुक में, किस प्रकार जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, ब्राह्मण की पत्नियों ने अपनी चेस्टिटी त्यागने के लिए तैयार हो गई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उनके पति उन्हें रोक रहे थे कि मत जाओ घर से। और देखिए आजकल के अगर हम देखें तो आजकल भी कुछ घरों में इतना डिसिप्लिन है कि एक बार लड़की घर से चले जाती है तो उसे घर में दोबारा नहीं रखा जाता। तो आप सोचिए आज से 5000 साल पहले कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा घर में कि एक बार पत्नी के घर से जाने के बाद उसे घर में दोबारा नहीं रखा जाएगा। और जब वो पति पत्नियों को रोक रहे थे तो पत्नियों को पता था कि अब उनकी कोई जगह नहीं है इस गांव में, उस घर में, फिर भी उन्होंने क्या, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गई। तो यही हम यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लक्ष्मी थी यहां पर अपने गुरु की रामानुजाचार्य की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गई। तो दरअसल देखिए हमारा भगवान के प्रति क्या संबंध है और हमारा भगवान की सेवा के प्रति कितना आकर्षण है, ये तब पता लगता है कि हमारा भगवान गुरु के प्रति और वैष्णव से क्या संबंध है, और गुरु और वैष्णव के प्रति क्या सेवा का हमारा भाव है। श्री प्रभुपाद बताते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर, कि हमारा क्या एटीट्यूड, क्या रवैया है हमारा, कितने आतुर हैं हम लोग वैष्णव की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए। ये चीज दिखाती है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे उसके बाद ये जो धनी व्यक्ति था, ये उस भारद्वाज को अपना सब धन देने के लिए भी तैयार था, परंतु भारद्वाज ने मना कर दिया कि मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि भारद्वाज ने बताया कि ये धन जन और सुंदरी अगर ये हमारे हृदय में आ जाती है, क्योंकि हमारे हृदय में कोई पार्टीशंस नहीं है, कोई अलग अलग चैंबर्स नहीं है हमारे हृदय में कि किस जगह हम लोग भक्ति को रख ले, किस जगह धन को रख ले, किस जगह सुंदरी को रख ले, नहीं, हमारे भक्ति हमारा सिर्फ एक हृदय है और उसमें केवल हम लोग कृष्णा कॉन्शियस को रख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी जगह कुछ भी चीज एंटर करनी शुरू होगी तो जो बाकी चीज है वो खत्म हो जाएंगी। तो वो धन लेने के लिए उस भारद्वाज ने, उस भक्त ने, वैष्णव ने मना कर दिया। तो ये जो टीचिंग्स हैं ये बहुत ही शिक्षा देने वाली थी हमारे को कि किस प्रकार हमारा गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति कितना शरणागति का मूड होना चाहिए। और ये टीचिंग्स देने वाली थी कि जो आचार्य हैं, निश्चित रूप से आचार्य अपने आचरण से करके दिखाते हैं ताकि आम जनता उसे फॉलो कर सके। रामानुजाचार्य के लिए बताया जाता है कि रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, परंतु फिर भी वो पर्सनली अपने गुरु महापूर्ण की सेवा करते थे और मीनियल सर्विसेज किया करते थे। मीनियल सर्विस जैसे उनके कपड़े धोना, उनके घर में सफाई करना, ऐसी इतनी इतनी मीनियल सर्विसेज किया करते थे रामानुजाचार्य। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी हमारे पास हमें बहुत ऐश्वर्य और कभी फॉलोअर्स मिलते हैं तो हम अपने मेन कर्तव्य को भूल जाएं। हमारा मुख्य कर्तव्य विनम्र बनना है और वैष्णव की सेवा करना है, इसे कभी नहीं भूलना। तो ये रामानुजाचार्य के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन था और यहां पर रामानुजाचार्य के कुछ बुक्स लिखी हैं, तो मैं वो बुक्स बता शास्त्र बता देता हूँ। रामानुजाचार्य ने कुछ पुस्तकों की रचना की हैं, जैसे वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, कुछ ऐसे उन्होंने लिखे हैं, भगवत गीता पर कॉमेंट्री लिखी है और वेदांत सूत्र पर उन्होंने कॉमेंट्री लिखी है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक वेदांत तत्व सार दिया है, जिसमें उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पे उन्होंने एक अपनी कमेंट्री, एक टीका लिखी है। तो ये कुछ बुक्स थी उन्होंने लिखी, और इसके साथ साथ रामानुजाचार्य की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम फाइनली कंक्लूड कर देंगे 5 मिनट्स में, कि जो इंस्ट्रक्शंस रामानुजाचार्य ने बताई हैं, तो मैं इसे इंग्लिश में पढ़ के फिर साथ साथ में हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इसमें पहली इंस्ट्रक्शन ये है, ऑलवेज सर्व योर स्पिरिचुअल मास्टर एंड अदर वैष्णवास बाय ट्रीटिंग देम विद इक्वल रिस्पेक्ट, हैव फुल फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यास, कि हमेशा अपने गुरु की और वैष्णव की सेवा करो, उन्हें सम्मान दो, हैव फुल फेथ इन द वर्ड्स ऑफ, और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन पर पूरा विश्वास रखो। और बता रहे, डू नॉट स्पेंड योर डेज एंड नाइट सर्विंग योर सेंसेस एक्सेप्ट फॉर स्पिरिचुअल लिटरेचर, ऑल दी अदर लिटरेचर्स आर ऑफ नो वैल्यू, कि जो भक्ति के जो ग्रंथ हैं, इनके अलावा जो ग्रंथ हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और हमें अपना दिन और रात व्यर्थ नहीं करना चाहिए इन्हें, खाली इन्हें पढ़ने मात्र में, जो फजूल के शास्त्र हैं उनको पढ़ने मात्र से। और बता रहे, वट एवर लव एंड डिवोशन यू हैव फॉर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, मे यू नाउ हैव द सेम लव एंड डिवोशन फॉर ग्लोरिफाइंग द नेम्स ऑफ हिज डिवोटीज, कि जो प्रेम और जो प्रचार करने की आतुरता है हमारे अंदर भगवान के नाम के प्रचार में, वही प्रेम और वही प्रचार की आतुरता हमें होनी चाहिए भक्तों के नाम का प्रचार करने में। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हर चीज में हम लोग क्या क्रेडिट चाहते हैं। यहां पर अगर किसी प्रोजेक्ट का 1% हमने किया है, तो वो 99% सुनाने में इतना हम लोग उत्सुक नहीं होंगे, वो 1% सुनाने में बहुत उत्सुक होंगे हम लोग, कि मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन था बीच में। तो कह रहे नहीं, हमें अपना जीवन, रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि पूरा व्यतीत करना है भक्तों के नामों का गुणगान करने में, भक्तों के नामों का प्रचार करने में। देखिए, भगवान के नाम के प्रचार करने से रामानुजाचार्य बता रहे हैं ये श्रेष्ठ है। टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ महाभागवत इज द ओनली मीन्स वेयर बाय वन कैन ऑब्टेन द सुप्रीम लॉर्ड, नोइंग दिस फैक्ट यू शुड फॉलो हिज ऑर्डर विथ फर्म डिटर्मिनेशन, कि एक महाभागवत के चरणों की शरण लेना ही एकमात्र सहारा है कि किस प्रकार हम लोग भगवान की शरण ग्रहण कर सके। और ये जानते हुए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भक्तों की इंस्ट्रक्शंस पर, और पूरी दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, एज अ वाइज पर्सन इज रियूंड बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट बाय गिविंग अप द सर्विस टू लॉर्ड विष्णु एंड द वैष्णवास, एवरी ह्यूमन बींग इज रियूंड, कि जिस प्रकार एक इंद्र तृप्ति की इच्छा जब व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है, तो उसको लगता है कि इंद्र तृप्ति छीन जाती है, उसको लगता है मेरा जीवन खत्म हो गया। उस प्रकार बता रहे, अगर भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा अगर खत्म हो गई, अगर हम लोग नहीं करते, तो हमारा जो मनुष्य जीवन है ये पूरा व्यर्थ चला गया है। तो शॉर्ट में एक्चुअली ये रामानुजाचार्य की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं यहां पर, तो अभी हमने सिर्फ इसमें 4-5 ली है, पर रामानुजाचार्य की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का एक सेंट्रल पॉइंट है, और वो सेंट्रल पॉइंट है सर्विंग डिवोटीज, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिवोटीज, भक्तों की सेवा करना, भक्तों की इंस्ट्रक्शंस को पालन करना, भक्तों के आश्रय में रह के भक्ति करना। वहां पर रामानुजाचार्य की सारी टीचिंग्स का कंक्लूजन यही है। तो आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है, और रामानुजाचार्य के हम लोग चरित्र से देख सकते हैं कि किस प्रकार रामानुजाचार्य ने हमें भक्ति सिखाई है, और भक्ति केवल बोलने मात्र से नहीं सिखाई, रामानुजाचार्य ने भक्ति अपने शब्दों के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से, अपनी ह्यूमिलिटी के माध्यम से रामानुजाचार्य ने हमें भक्ति करना सिखाया है, कि क्या भक्ति होती है और हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। और रामानुजाचार्य ने, जब रामानुजाचार्य इस धराधाम पर थे, तो उन्होंने बहुत सारे जीवों का उद्धार किया था, और अभी भी अपनी टीचिंग्स के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से रामानुजाचार्य अभी भी असंख्य जीवों का उद्धार करते आ रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ही रीजंस इल हु टेल्स वैष्णव डाय व्हेन दो आर्ट लिविंग स्टिल इन साउंड, द वैष्णव डाय टू लिव एंड लिविंग ट्राई टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड, कि एक वैष्णव का पूरा जीवन इसलिए व्यतीत होता है कि वो अपना हरि नाम के प्रचार में। तो किस प्रकार रामानुजाचार्य ने, जब वो उपस्थित थे यहां पर, तब भी उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया, भगवान का प्रचार किया, और अपनी अनुपस्थिति में भी अपनी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से वो इसका प्रचार करते हुए आए हैं। तो हालांकि मैं योग्य नहीं था रामानुचार्य के बारे में कुछ बोलने में, मेरे को अभी भी बहुत डर लग रहा था मेरे को वहां पर आप वैष्णव की कृपा से, आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।